नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन ना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ई एफ शुमाखर की स्मॉल इज ब्यूटिफुल अर्थशास्त्र पर निबंधों का प्रभावशाली संकलन है, जो पहली बार 1973 में प्रकाशित हुआ था। इसका उपशीर्षक इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड पुस्तक के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करता है। शुमाखर उस आर्थिक सोच की आलोचना करते हैं जिसमें उत्पादन, उपभोग, विशाल संस्थाएं और सकल वृद्धि ही प्रगति के मुख्य मापदंड बन जाते हैं। उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था मानव गरिमा, स्थानीय समुदाय, प्रकृति और दीर्घकालिक स्थिरता को पीछे धकेल देती है। पुस्तक ऊर्जा संकट और औद्योगिक विस्तार के दौर में लिखी गई थी, लेकिन इसके प्रश्न आज भी प्रासंगिक हैं। यह पारंपरिक अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के नैतिक आधारों की जाँच है। शुमाखर छोटे पैमाने, विकेंद्रीकरण, उचित तकनीक, सार्थक काम और सीमित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का पक्ष रखते हैं। वे न तो केवल बाजार का समर्थन करते हैं, न केंद्रीकृत राज्य नियंत्रण का। उनका आग्रह है कि आर्थिक साधनों का मूल्यांकन इस आधार पर हो कि वे लोगों और समुदायों के लिए वास्तव में क्या करते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वृद्धि को प्रगति मानने वाली अर्थव्यवस्था की आलोचना। शुमाखर का केंद्रीय तर्क है कि उत्पादन और उपभोग की निरंतर वृद्धि को स्वतः प्रगति मान लेना गंभीर भूल है। आधुनिक अर्थव्यवस्था अक्सर उन गतिविधियों को सफलता मानती है जो बाजार में अधिक लेन देन पैदा करें, भले ही उनके साथ प्रदूषण, संसाधन क्षय, सामाजिक तनाव या मानवीय निर्भरता बढ़े। शुमाखर पूछते हैं कि यदि किसी व्यवस्था की समृद्धि सीमित प्राकृतिक पूंजी को तेजी से खत्म करने पर टिकी हो, तो उसे स्थायी समृद्धि कैसे कहा जा सकता है। उनका ध्यान विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन और खनिज जैसे संसाधनों पर है, जिन्हें आय की तरह खर्च नहीं बल्कि विरासत या पूंजी की तरह बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इस दृष्टि में आर्थिक गणना अधूरी है, क्योंकि बाजार मूल्य अक्सर पर्यावरणीय क्षति और भविष्य की पीढ़ियों की लागत को दर्ज नहीं करता। पुस्तक विलासिता और आवश्यकता के बीच अंतर पर भी जोर देती है। जब समाज हर अतिरिक्त सुविधा को आवश्यक मानने लगता है, तो प्रतिस्पर्धा, अपव्यय और असंतोष बढ़ते हैं। शुमाखर का निष्कर्ष यह नहीं कि हर प्रकार की वृद्धि गलत है। वे कहते हैं कि वृद्धि को मानव कल्याण, संसाधन सीमाओं और नैतिक जिम्मेदारी के अधीन होना चाहिए। इसलिए यह आलोचना केवल कम खर्च करने का उपदेश नहीं, बल्कि प्रगति की परिभाषा बदलने का प्रस्ताव है। दूसरा, छोटे पैमाने और विकेंद्रीकरण का मानवीय तर्क। स्मॉल इज ब्यूटिफुल में छोटा केवल आकार का प्रशंसा शब्द नहीं है। शुमाखर के लिए सही पैमाना वह है जिसमें निर्णय लेने वाले लोग अपने निर्णयों के परिणाम देख सके, भागीदारी कर सके और जवाबदेही तय कर सके। बहुत बड़ी कंपनियां, प्रशासनिक ढांचे और उत्पादन प्रणालियां दक्षता के कुछ लाभ दे सकती हैं, पर वे व्यक्ति को दूरस्थ नियमों और विशेषज्ञों पर निर्भर भी बना सकती हैं। शुमाखर इसीलिए ऐसे संगठनात्मक रूपों को महत्व देते हैं जिनमें स्थानीय ज्ञान, प्रत्यक्ष संबंध और सामुदायिक नियंत्रण बचा रहे। उनका तर्क यह नहीं कि हर संस्था अनिवार्यतः छोटी हो। रेल, ऊर्जा या सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े समन्वय की जरूरत हो सकती है, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि जब विशालता अपने आप में लक्ष्य बन जाती है, तब संस्था अपने मूल मानवीय उद्देश्य से कट सकती है। पुस्तक में विकेंद्रीकरण को शक्ति बांटने की व्यावहारिक विधि की तरह देखा गया है। स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त स्वायत्तता मिलने पर वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकती हैं, जबकि व्यापक स्तर की संस्था केवल आवश्यक समन्वय करे। यह विचार आज स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं, सहकारी संस्थाओं और नगर स्तर की योजना पर होने वाली बहसों में दिखाई देता है। शुमाखर का योगदान यह दिखाना है कि पैमाने का प्रश्न केवल लागत का प्रश्न नहीं, लोकतंत्र, समझ और मानवीय संबंधों का भी प्रश्न है। तीसरा, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी से विकास में स्थानीय क्षमता का निर्माण। शुमाखर की सबसे व्यावहारिक अवधारणाओं में इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी प्रमुख है। इसका अर्थ ऐसी तकनीक से है जो न अत्यंत आदिम हो, न इतनी पूंजी, ऊर्जा और विशेषज्ञता मांगे कि स्थानीय लोग उसे खरीद, चला या मरम्मत ही न कर सकें। विकासशील समाजों के संदर्भ में उनका तर्क था कि अत्यधिक उन्नत औद्योगिक तकनीक अक्सर कम लोगों को रोजगार देती है और बाहरी मशीनों, आयातित पुर्जों तथा केंद्रीकृत वित्त पर निर्भरता बढ़ाती है। इसके विपरीत, मध्यम स्तर की उपयुक्त तकनीक स्थानीय संसाधनों और कौशल के अनुरूप उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती है। इसका उद्देश्य तकनीकी प्रगति को रोकना नहीं है। प्रश्न यह है कि किस तकनीक से अधिक लोगों को उपयोगी काम, सीखने का अवसर और स्थायी आजीविका मिलती है। शुमाखर के अनुसार किसी मशीन की श्रेष्ठता केवल उसकी अधिकतम उत्पादकता से तय नहीं होनी चाहिए। उसके रखरखाव, लागत, ऊर्जा उपयोग, रोजगार प्रभाव और स्थानीय नियंत्रण को भी देखना चाहिए। यह ढांचा तकनीक को सामाजिक संदर्भ से अलग मानने से रोकता है। हालांकि पुस्तक हर क्षेत्र के लिए एक निश्चित उपकरण सूची नहीं देती, इसलिए इसके विचारों को परिस्थितियों के अनुसार लागू करना पड़ता है। फिर भी इसका स्थायी सबक स्पष्ट है। विकास परियोजनाएं तभी मजबूत होती हैं जब वे लोगों को निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं, ज्ञान और उत्पादन के सक्रिय भागीदार बनाती हैं। चौथा, बौद्ध अर्थशास्त्र में काम, उपभोग और कल्याण की नई कसौटी। बौद्ध अर्थशास्त्र शीर्षक निबंध में शूमाखर आर्थिक जीवन को नैतिक और मानवीय उद्देश्य से जोड़ते हैं। वे उस धारणा पर प्रश्न उठाते हैं कि काम मुख्यतः अप्रिय बोझ है और उपभोग ही जीवन का मुख्य प्रतिफल। उनके अनुसार अच्छा काम व्यक्ति को कौशल विकसित करने, दूसरों के साथ सहयोग करने और उपयोगी योगदान का अनुभव देने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए उत्पादन का संगठन केवल प्रति श्रमिक अधिकतम उत्पादन निकालने के लिए नहीं होना चाहिए, उसे मनुष्य की रचनात्मकता और गरिमा को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह उपभोग का लक्ष्य लगातार अधिक वस्तुएं जमा करना नहीं, आवश्यकताओं की संतुलित और विवेकपूर्ण पूर्ति है। शूमाखर बौद्ध परंपरा से संयम, अहिंसा और परस्पर निर्भरता की प्रेरणा लेते हैं, लेकिन इसे किसी विशेष धार्मिक आस्था को अर्थव्यवस्था पर थोपने के प्रस्ताव की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। उनका व्यापक बिंदु यह है कि हर अर्थव्यवस्था कुछ न कुछ मूल्य मानकर चलती है। यदि वह केवल लाभ और उपभोग को प्राथमिकता देगी तो उसके सामाजिक परिणाम भी उसी दिशा में होंगे। यह निबंध आर्थिक तटस्थता के दावे को चुनौती देता है। साथ ही यह कठिन प्रश्न उठाता है कि नीतियां काम की गुणवत्ता, सामाजिक संबंधों और पर्याप्तता जैसी बातों को कैसे महत्व दें। पुस्तक का उत्तर पूर्ण नीति खाका नहीं देता, पर आर्थिक बहस में इन उपेक्षित कसौटियों को अनिवार्य बनाता है। अंत में भूमि, प्राकृतिक पूंजी और स्थायित्व की नैतिक जिम्मेदारी। शूमाखर भूमि को केवल उत्पादन का एक साधन मानने के विरुद्ध हैं। उनके लिए भूमि जीवित प्रणालियों, भोजन, समुदाय और भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ी आधारभूत विरासत है। इसलिए कृषि या उद्योग का मूल्यांकन केवल तत्काल उपज और लाभ के आधार पर नहीं होना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता, जल, जैविक संतुलन और दीर्घकालिक पुनरुत्पादन क्षमता को भी आर्थिक निर्णय का हिस्सा मानना होगा। यह दृष्टि उस औद्योगिक प्रवृत्ति की आलोचना करती है जिसमें प्रकृति को मानो असीमित कच्चे माल और कचरा समेटने वाली जगह समझा जाता है। पुस्तक में संसाधनों के बीच एक महत्वपूर्ण भेद भी उभरता है। नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग उनकी पुनरुत्पादन क्षमता बचाते हुए किया जा सकता है, जबकि जीवाश्म ईंधन जैसी सीमित संपदा का खर्च भविष्य की संभावनाओं को कम करता है। इसीलिए शूमाखर ऊर्जा और सामग्री के उपयोग में मितव्ययिता को केवल व्यक्तिगत सद्गुण नहीं, सार्वजनिक नीति का विषय मानते हैं। उनका तर्क आधुनिक पर्यावरणीय लेखन से पहले का है, फिर भी यह आज के जलवायु और संसाधन संकटों के लिए उपयोगी कसौटी देता है। वे यह नहीं कहते कि मनुष्य को प्रकृति से अलग रहना चाहिए। वे आग्रह करते हैं कि उत्पादन प्रणालियां प्रकृति की सीमाओं और पुनर्जीवन की गति के भीतर काम करें। इसी अर्थ में स्थायित्व उनके लिए तकनीकी सुधार से अधिक आर्थिक विवेक और नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। निष्कर्ष में स्मॉल इज ब्यूटिफुल उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अर्थव्यवस्था को केवल कीमतों, वृद्धि दरों और व्यापार के आंकड़ों से अधिक व्यापक रूप में समझना चाहते हैं। अर्थशास्त्र सार्वजनिक नीति, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, तकनीक, व्यवसाय और सामुदायिक संगठन से जुड़े पाठकों को इसमें विचारोत्तेजक आधार मिलेगा। यह उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो स्थानीय उत्पादन, टिकाऊ कृषि, रोजगार की गुणवत्ता या तकनीक के सामाजिक प्रभाव पर विचार करते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ किसी तैयार सूत्र में नहीं, बल्कि बेहतर प्रश्नों में है। किसी परियोजना, कंपनी या नीति को देखते समय पाठक पूछ सकता है कि उसका सही पैमाना क्या है, उससे किसे नियंत्रण मिलता है, वह किस संसाधन को खर्च करती है और क्या वह उपयोगी तथा सम्मानजनक काम पैदा करती है। शूमाखर का लेखन कई बार दार्शनिक और अपने समय की भाषा से बधा हुआ लग सकता है। कुछ पाठकों को इसके व्यापक नैतिक दावे या बड़े उद्योग के प्रति संशय पर बहस करनी होगी। फिर भी इसी कारण यह समान विषय की केवल पर्यावरणीय चेतावनी देने वाली पुस्तकों से अलग है। यह प्रदूषण या संसाधन संकट को अलग समस्या नहीं मानती, बल्कि उन्हें आर्थिक उद्देश्यों, तकनीकी चुनावों और जीवन मूल्यों से जोड़ती है। अन्य विकास संबंधी पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता यह है कि यह दक्षता के साथ पर्याप्तता, उत्पादकता के साथ गरिमा और विकास के साथ स्थानीय स्वायत्तता को रखती है। इसका सबसे स्थायी योगदान एक सरल लेकिन कठोर कसौटी है। अर्थव्यवस्था का मूल्य अंततः इस बात से तय होना चाहिए कि वह लोगों, समुदायों और पृथ्वी के दीर्घकालिक जीवन के लिए कैसी व्यवस्था बनाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ईएफ शूमाखर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।